لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی، وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، وہ سنتی تھی ابل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعویل کرتا ہے، وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔
اوم شانتی۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی جو مکہ میں رہتی تھی، ایک بڑی عورت تھی جو کہ مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی، کن باتوں کو سنتی تھی، مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی، کیا سنتی تھی؟ محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے سے، کوئی بہت اچھے گھرانے سے، ہاشم محمد پیغمبر کے دادا کا نام تھا، دادا کے پتا کا نام۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی، وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ ایک سمے تھا جب عرب میں دو باتیں تھیں، ایک جس کو کہتے ہیں پولیتھیزم، انیک خداؤں کی عبادت کرنا، اور دوسرا آئیڈولیٹری ارتھات بت پرستی، مورتی پوجا۔ ایک تو مورتی پوجا کرنا اور بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا، بہت سارے پتھر کی، لکڑی کی مورتیاں بنانا، اس کی پوجا سب جگہ چالو تھی۔ ایسے سمے پر ایک نئی کرانتی ہوئی، ایسے سمے پر ایک نئے دھرم کی ستھاپنا، ایسے سمے پر ایک نئی لہر پھیلائی کسی نے، اور کئی سارے لوگ اس کے ویرودھ میں ہو گئے، کیونکہ عرب میں تپتی ریگستان میں ایک ستھان تھا مکہ، اس جگہ پر کعبہ تھا، تو وہ جو کعبہ وہاں پر اس طرح کی پوجائے ہوتی تھی، کئی سارے خداؤں کی پوجا اور بت پرستی۔ ساتویں شتابدی کی یہ بات ہے، تب یہ سب ہوتا تھا۔ اس سمے اس بڑھیا کی یہ کہانی ہے کہ یہ جو ضعیفہ، یہ جو بوڑھی عورت تھی، وہ مکہ میں رہتی تھی، وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ سنتی تھی کہ ایک ویکتی ہے محمد نام کا، وہ کیا کرتا ہے، حبل، حبل ارتھات وہ مکہ میں جو دیوتا تھے جس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کو لات بھی کہتے ہیں، وہ جو لات یا وہ جو حبل تھا اس کی جو پوجا کرتے تھے، اس کی یہ تذلیل کرتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا ہے، یہ کہاں سے نیا آ گیا، اور وہ اس کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے پیمانے کی تعمیل کرتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے بس وہی کرتا ہے۔ وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، وہ سب کو اپنا غلام بنا کے رکھتا ہے، ایسی باتیں اس بڑھیا نے سن کے رکھی تھی۔ مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا، اس نے یہ بھی سنا تھا کہ جو ایک بار اس کو سن لے پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کا ہی اس کو سب سے زیادہ دکھ تھا، کیونکہ یہ جیسے پرانے خیالاتوں کے لوگ ہوتے ہیں اور اچانک کوئی نیا خیال والا آ جائے تو ویرودھ ہوتا ہے۔ جب بھی نئے دھرم کی ستھاپنا ہوگی، نئی وچار دھارا سنسار میں آئے گی، جب بھی کچھ نیا ہوگا، تین باتوں سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ جو بھی کوئی نئی سنستھا، نیا یگیہ، نئی کرانتی ہوگی، تین باتیں ہوگی۔ سب سے پہلا، لوگ ہنسی اڑائیں گے، لاف، بہت ہنسی اڑائیں گے۔ دوسرا، اس کا ویرودھ کرنا چالو کر دیں گے۔ سیم اسلام کے ساتھ ہوا، جیسے ہی محمد پیغمبر نے یہ جو نئی بات بتانا چالو کر دی کہ خدا ایک ہے، وہ تو وہ زمانہ تھا جب بت پرستی چالو تھی، انیک خداؤں کی پوجا چالو تھی، اچانک اس نے نئی بات بتائی، पहले लोगों ने हंसी उड़ाई, बाद में तो विरोध करना चालू कर दिया, क्योंकि वहां पर तीर्थ स्थान है, वो हजारों लोग आ रहे, वहां के जो व्यापारी लोग हैं उनका धंधा है वहां पर, तो वो तो सब खत्म हो जाएगा अगर वो सब एक की परस्ती करने लगेंगे तो। और तीसरा फिर स्वीकार करते हैं, पांच सौ सत्तर ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ, जन्म
छह महीने पहले
पिता की मृत्यु और जन्म के कुछ समय बाद ही माता की भी मृत्यु, अनाथ जैसे पले। उनका उनके अंकल और दादा ने उनकी पालना की, और जब तक वो 40 वर्ष के न थे तब तक यहां वहां घूमना, तिजारत बिजनेस के लिए यहां वहां जाना, तब भी उनके लिए लोग कहते थे कि ये बहुत ट्रस्टवर्थी है, इन पर बहुत विश्वास किया जा सकता है। और एक चीज हमने कहीं पढ़ी कि एक ईसाई क्रिश्चियन स्कॉलर ने जब इस छोटे बच्चे को देखा था और इसको देखकर उसने कहा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके द्वारा कोई महान कार्य होने वाला है। तो वो महान कार्य जब वो 40 वर्ष के हुए और वो जो एक गार थी, गार अर्थात गुफा, हीरा, गारे हीरा, हीरा की जो गुफा थी वहां पर बैठकर एकांत में अपने आप से बातें करते थे, और एक दिन अचानक जिब्राइल खुदा का फरिश्ता वहां प्रकट होता है। और उस दिन वो अनपढ़ थे, उनको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, वो सारी की सारी भगवान के खुदा के सारे शब्द आयते कुरान की वहां नाजिल हुई, वहां प्रकट हुई, और उसी की याद में आज का दिन है ईद, रमजान के 30 दिन उपवास के बाद आज का दिन खुदा क्या करता है, बख्शीश देता है सभी को। तो ये जो ज़हीफ़ा, ये जो बूढ़ी औरत थी, उसको बड़ा दुख होता था ये मोहम्मद को सुनकर, ये क्या क्या करते रहता है।
लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची, उमुल के पांव पर सर रख उसने ये दुआ मांगी, मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है कि आज कल मैं रंज सहती हूँ, वो गम ये है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में, मिटा दो उसकी हस्ती को तो ना ले कोई ना मुस्का, जिगर छलनी हो जाता है सुन सुन कर कला मुस्का।
लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची, ये ज़ईफ़ा काबा में जाती थी और एक दिन वहां पहुंची, हुबुल के पांव पर सर रखकर, वो जो मूर्ति थी और जिसको वो खुदा मानते थे उसके सिर पर पांव रखकर उसने ये दुआ मांगी, क्या प्रार्थना की, मैं तुझको पूछती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, तू ही सब कुछ है, तू ही खुदा है, बड़ा अफसोस है कि आजकल मैं रंज सहती हूँ, पर आजकल दुख ये है कि ये नया कोई आ गया है और कुछ नई फिलॉसफी और नई बातें बता रहा है, इसका ही मुझे दुख है, और वो गम है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में, यही सबसे बड़ा दुख है, जहां भूत परस्ती हो रही है और जहां इतने सारे खुदाए हैं वहां पर ये एक खुदा का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, उसको बहुत दुख है, इसलिए वो क्या कहती है, मिटा दो उसकी हस्ती को, अपने खुदा से कहती है कि मोहम्मद को खत्म कर दो, मिटा दो उसकी हस्ती को, ना ना तो ना ले नाम कोई उसका, उसका कोई नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये सुन रही हूं कि कई लोग उसके पीछे जा रहे हैं और जो उसको एक बार सुन लेता है वो उसका ही बन जाता है, कुछ ऐसा कर, ए खुदा अपने खुदा से कह रही है कि इसका कुछ कर, जिगर छलनी हुआ जाता है उसका, उसको बहुत दुख हो रहा है कि सारे लोग जो हमारे अपने थे अब उधर जा रहे, जिगर छलनी हो जाता है सुन सुन कर कलाम उसका।
उसका दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई। समझती थी ये दिल में अब मेरी उम्मीद भर आई। ज़ईफ़ा को खुशी थी अब उबुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद भर आई, दुआ करके उबुल से अपने दिल में खूब पछताई। दुआ करके उबुल से अपने दिल में खूब पछताई। गरज तरकीब उसने सोचनी है खुद ही घर आकर, कि छोड़ूंगी ये बस्ती में रहूंगी और कहीं जाकर।
दुआ करके उठी सजदे से, उसने दुआ की, उसने प्रार्थना की और वहां से वापस अपने घर आई। समझती थी ये दिल में कि अब उम्मीद भर आई। उसने प्रार्थना की और विश्वास उतना ज्यादा था कि ये जो हुबुल है ये बिजली गिराएगा और मोहम्मद और उसके सभी साथियों को नष्ट कर देगा। ज़ईफ़ा को खुशी थी कि अब उबुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर ना उम्मीद भर आई, पर कुछ दिन गुजरे तो उसको पता चला ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर अब क्या करे। तो उसने क्या सोचा, फिर दुआ करके हुबुल से अपने दिल में खूब पछताई। गरज तरकीब उसने सोच ली ये खुद ही घर आकर, कि छोड़ूंगी ये बस्ती में रहूंगी और कहीं जाकर। उसने सोचा अब मैं यहां नहीं रहूंगी, अब मुझे यहां रहना ही नहीं है, इस मक्का में रहना ही नहीं है, क्योंकि सब लोग मोहम्मद के पीछे जा रहे हैं। इंग्लिश में जब भी मोहम्मद पैगंबर का नाम लिया जाता है तो ये लिखा जाता है पीस बी अपॉन हिम, पी बी यू एच, और इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो एस ए डब्ल्यू, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्दू में एस ए डब्ल्यू। जब भी उनका नाम लिखा जाएगा ये दो शब्द ऐड होंगे, नहीं तो वो अपमान समझते हैं, इतना उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्योंकि ऐसा कहना है कि उसमें जो गुण थे, जो दिव्य गुण थे, वो किसी भी आज तक किसी भी मनुष्य में नहीं हुए, इतने सारे गुण उसमें थे। तो पीस बी अपॉन हिम, प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने क्या किया, इस ज़ईफ़ा ने, इस बूढ़ी औरत ने सोचा कि अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, मुझे यहां से जाना है।
एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठरी ली, निकल के अपने घर से और दरवाजे पर आ बैठी। ज़ईफ़ा सोचती थी अब कोई मजदूर मिलता है, उसको क्या खबर थी के खुदा का नूर मिलता है। फरीजा सुबह का करके अदा सरकार दो आलम, चले जाते थे काबा की तरफ वो रहमत आलम। जलों में आग के शमसों कमर मालूम होते थे, पे तस्लीम सजदे में शजर मालूम होते थे।
गरज एक दिन सुबह को उसने अपनी गठरी ली, उस बूढ़ी औरत ने क्या सोचा, मैं इस गांव को छोड़ के चली जाऊंगी, एक गठरी ली, निकल के अपने घर से दरवाजे पर आ बैठी। दरवाजे पर आकर बैठ गई और क्या करने लगी, सोचती थी कि कोई मजदूर मिल जाए जो मेरी ये गठरी अपने कंधों पर लेगे। उसको क्या खबर थी पर कि उसको अब कौन मिलने वाला है, खुदा का नूर। फरीजा सुबह का, फरीजा अर्थात सुबह की प्रार्थना इबादत करके अदा करके सरकारे दो आलम, मोहम्मद पैगंबर के लिए पूरी कुरान में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। दो आलम अर्थात दो जहान का जो मालिक है, इस्लाम में दो जहान होते हैं, तो दो जहान का जो मालिक है वो प्रोफेट निकलकर चले जाते थे काबा की तरफ वो रहमत आलम। रहमत आलम वो कैसा है, रहमत का आलम मालिक है, जैसे कि ओशन है। चले जाते थे काबा की, वो तो जा रहा था अपनी तरफ से, चले जलों में आप तो शमसो कमर, ये बहुत उर्दू शब्द है, इनका अर्थ हमको पूरी तरह से नहीं पता, पर इसका अर्थ ये हो सकता है कि जैसे बहुत तेजस्वी, जैसे कि सूरज है रात में, जैसे कि پے تسلیم سجدے میں سجر معلوم ہوتے تھے. یہ دو شبدوں میں یہ بتایا ہے کہ جیسے سادھارن ویکتیوں میں وہ اسادھارن تھے, اندھیرے میں جیسے وہ پرکاش تھے.
منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی, یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی. ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا, بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں, بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہے تو گھر کا چل گھتری میری لے کر. کہا مزدور ہے گھر تو کر چل گھتری میری لے کر, میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر. یہ سن کر آپ نے گھتری اٹھا کر آپ نے سر پر لی. ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی.
ضعیفہ منتظر انتظار کر رہی تھی مزدور کی, بیٹھی تھی گھبرائی, یکایک سامنے سے کیا ہوا چاند سی صورت نظر آئی. ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا, بتا کیا نام ہے تیرا؟ وہ پوچھتی ہے اس سے کہ تیرا نام کیا ہے. وہ کہتا ہے مزدور ہوں. بتا کیا کام ہے تیرا؟ وہ کہتا ہے میں مزدور ہوں, تیرا جو بھی کام ہے مجھے بتا. کہا مزدور ہے تو گھر تو چل گٹری میری لے کے. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اگر تم مزدور ہے تو یہ میری گٹری لے کر ساتھ میں چل, میں خوش کر دوں گی تم کو مزدوری تجھے دے کر. یہ سن کر اپنی گٹری اٹھا کر آپ نے سر پر لی. ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی. دو شبد آتے ہیں اسلام میں, ایک ہے نبی ایک ہے پیغمبر. نبی اور دوسرا ہے رسول. نبی خدا رسول خدا. محمد پیغمبر کو نبی خدا کہا جاتا ہے. نبی ارتھات جس نے نیا سماچار سنا قرآن کا, بھگوان کے شبدوں کا. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک ماتر ایسا شاستر ہے جو انکرپٹڈ ہے, اس میں ذرا بھی اس کے پہلے کے جتنے تھے سب میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. پر وہ کہتے وہ آج تک بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا, یہ مانیتا ہے. اس کے لیے وہ نبی خدا ہے اور اس کو رسول خدا کہا جاتا ہے. خدا کا رسول ارتھات پیغمبر ارتھات میسنجر آف گاڈ. تو نبی اور رسول, نبی خدا رسول خدا, پیغمبر خدا پیغمبر خدا, پیغمبر ارتھات پیغمبر. تو ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی. کیسی اچھی عادت ہے کہ جو بوڑھے ہیں جو اناتھ ہیں جو غریب ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ جب محمد پیغمبر نے شریر چھوڑا 62 ایج ان کی تھی, کیا چھوڑ کر گئے؟ نہ ہیرے نہ چاندی نہ سونا کچھ بھی نہیں. ان کا ایک کھچر وہ جو گھوڑا ایک, دوسرا زمین وہ بھی زکات وہ بھی دان میں دی ہوئی, اور ان کا وہ ویپن شستر بس. اس کے اترکت کچھ بھی نہیں تھا. جو کچھ تھا سب کچھ سب کو دے دیا. جب بھی بھوجن کیا ہے جیون بھر ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ جو اکیلے کھایا ہے, دوسروں کو بلا بلا کے ان کو کھلایا ہے. تو ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی.
غرض گتھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی, کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی. کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری, محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری. لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم, تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم, یہ کوئی کام ہے اماں میں اب لوں جس کی مزدوری, کوئی گھر اور خدمت ہو تو بھی میں کروں پوری. یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری, ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری. ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا, مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا.
गरज गठरी को लेकर मंजिल मकसूद पर आई, जो निश्चित स्थान था मकसूद, वहां पर पहुंची। कहा दिल से कि ए दिल अब उम्मीद तेरी भर आई। कहा बेटा जो थी दिल में तमन्ना हो गई पूरी। क्या तमन्ना थी? कि मोहम्मद से दूर जाना है। तो मोहम्मद साथियों से हो गई दूरी। अब गांव के बस्ती से वो बाहर आ गई। लगी देने जो मजदूरी ज़ईफ़ा आपको उस दम, फिर वो मजदूरी देने लगी तो उसने क्या कहा, उन्होंने तो फरमाने लगे उस दम हजूरे सरवरे आलम, ये कोई काम है अम्मा जो अब मैं लू आपकी इससे मजदूरी लू? ये कोई छोटा सा, ये तो कोई काम ही नहीं, अगर कोई और खिदमत हो तो भी मैं वो पूरी कर दू। ये फरमाते हुए कि आपने जाने की तैयारी की, क्या किया उसने, जाने की तैयारी की, मुझे किसी मजदूरी की आवश्यकता नहीं है, और कोई और काम होगा तो बता देना, सेवा खिदमत। ज़ईफ़ा से इजाजत चाहते थे रहमते बारी। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा ठहर, चले जाना, मुझे एक बात कहनी है, जरा सुनकर जाना, पर जाते जाते मुझे तुमसे एक बात कहनी है, वो जरा सुनकर जाना। कौन सी बात थी वो?
चले जाना यकीन जानो कि अब मक्का में झगड़ा होने वाला है, मैं समझाती हूँ तुझको इसलिए तू बोल भाला है। वो मक्का में कबीला हाशमी नाम लकब वाले, वही बेताज है सरदार अब्दुल मुत्तलिब वाले, उन्हीं में एक जवान है जो सुना जाता है साहिर है कि इस फन में मगर बेटा वो अपने खूब माहिर है। वो सर होता है जिसके तुफ में उल्फत बो के रहता है, जो सुनता है कलाम उसका वो उसका हो के रहता है, हमेशा बच के चलना उससे जब तू नाम सुन उसका, नसीहत है यही मेरी न सुनना तू कलाम उसका। नबी बुरी आंखें दिल में नूर वहदत भरने वाले थे, नसीहत सुन रहे थे जो नसीहत करने वाले थे।
वो क्या कहती है कि मेरी एक बात सुनकर जाना। कौन सी बात सुनकर जाना? यकी जानो कि अब मक्का में झगड़ा होने वाला है। वो कहती है कि मक्का में अभी झगड़ा होने वाला है बहुत, क्योंकि बहुत विरोध बढ़ रहा है, बहुत कुछ होने वाला है वहां। मैं समझती हूँ तुझको, मैं तुझको समझा इसके लिए रही हूँ क्योंकि तू बहुत ही भोला भाला है तू इन जब झमेलों में मत पड़ना, तू बहुत भोला भाला है, इसके लिए मैं तुझको समझाती हूँ कि मक्का में कबीला हाशमी नाम लो अकब वाले, वही बेताज है सरदार अब्दुल मुत्तलिब वाले। वो मोहम्मद के जो दादा थे उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब। वहां जो हाशमी घराना है वहां पर उन्हीं में एक जवान रहता है, एक जवान उसमें है जो सुना जाता है बहुत ही साहिर है, बड़ा जादूगर है, जादू डालता है, जो उसको एक बार सुन लिया कि गया तो तुम उसके जादू से दूर रहना, वो बड़ा ही साहिर है, वो इस फन में मगर बेटा वो बड़ा ही खूब माहिर है, इसके लिए उससे दूर रहना, उसके पास मत जाना। वो सर होता है जिसके दिल में उल्फत बो के रहता है, जो भी सिर रहता है उसमें वो प्यार बो के रखता है, इसके लिए उसके चंगुल में बिल्कुल मत आना। जो सुनता है कलाम उसका वो उसका ही रह के जाता है, हमेशा बच के चलना उससे जब तू नाम सुन उसका। नसीहत है ये मेरी, मैं तुझे नसीहत देती हूँ, ये मेरी एडवाइस है तुमको। क्या एडवाइस है? तू सुनना ना कलाम उसका, उसका कलाम बिल्कुल सुनना मत, क्योंकि एक बार सुन लिया तो गए काम से। नबी बुढ़िया के दिल में रूहे वहादत भरने वाले थे। नबी जो थे क्या करने वाले थे? वहादत, यूनिटी, एकता, एकत्व कि एक खुदा है, ये भरने वाले थे। नसीहत सुन रहे थे वो, कौन? जो नसीहत देने वाले थे, जो दुनिया को राह दिखाने वाले हैं उसको वो राह दिखा रही थी और वो चुपचाप सुन रहे थे। आगे
ज़ईफ़ा ने कहा बेटा भला क्या नाम है तेरा, तेरा आवाज क्या है और क्या अंजाम है तेरा। कहा सरकार ने बुरिया से तुझको क्या नाम बतलाऊं, मैं क्या काम बतलाऊं, मैं क्या अंजाम बतलाऊं।
ज़ईफ़ा ने कहा कि बेटा भला तेरा नाम क्या है, तेरा आगाज क्या है, तू कहां से आया है, क्या तेरी शुरुआत है, कहां से तू है, अंजाम क्या है तेरा, कहां सरकार ने, अब वो मजदूर बोलने लगता है, कहां सरकार ने बुढ़िया से तुझको क्या नाम बतलाऊं, मैं क्या काम बतलाऊं, मेरा क्या आगाज बतलाऊं।
मैं बंदा हूँ खुदा का और मैं उसका पैगंबर हूँ, कहा गर्दन झुका कर आपने, मैं ही मुहम्मद हूँ। मैं हूँ मासूम दुनिया में, मेरा दुश्मन जमाना है, खुदा वाहिद है आलम में, मुझे बस ये बताना है।
वो कहता है मैं बंदा हूँ खुदा का और मैं उसका पैगंबर हूं। मैं कौन हूं? उसका बंदा हूं और मैं पैगंबर हूं। कहां गर्दन झुकाकर आपने, मैं ही मोहम्मद हूं। मैं हूं मासूम, पर दुनिया क्या है, दुनिया में मेरा दुश्मन जमाना है, खुदा वालिद है, खुदा ही एकमात्र वालिद है आलम में, इस पूरी दुनिया में एक ही वालिद है। मैं बस ये बताता हूँ।
ये सुनना था कि बस आंखों से आंसू हो गए जारी, नबी के इश्क की एक छोट सी दिल पर लगी तारी, ज़ईफा ने कहा बेटा करो मुश्किल मेरी आसान, मैं ऐसी जीत के सदके में ऐसी हार की कुर्बान।
ये सुनना था कि बस आंखों से क्या हो गया, आंसू आ गए, नबी के इश्क की चोट सी दिल पर लगी भारी, ज़ईफा ने कहा बेटा करो मेरी मुश्किल आवासा, मैं ऐसे जीत के सदके में ऐसी हार की कुर्बान।
हुआ फिर हाल बर उसकी जो फजले दी जमी बारी, ज़ईफा की जुबा पर खुद बखुद कलमा हुआ जारी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
तो ज़ईफा की जुबान पर क्या हुआ, खुद ब खुद कलमा हुआ जारी, ला इल्ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। विरोधियों को क्या किया, कैसे बना दिया, कैसे जीता, जो कि विरोध थे, इतना विरोध था कि उसने क्या प्रार्थना की थी, क्या दुआ मांगी थी, मोहम्मद ही नहीं उसके साथियों को भी मिटा देना, और अब उसको क्या किया, कोई नसीहत नहीं थी, और उसको क्या किया, कोई भी शिक्षा नहीं थी, कोई भी बात नहीं बताई कि तुम ये करो वो करो या मेरे पीछे आओ, कुछ भी नहीं कहा। कैसे शिक्षा दी, अपनी चलन से। कैसे शिक्षा दी, अपनी अपनी व्यवहार से, अपने कर्तव्यों से, ह्यूमिलिटी नम्रता का वो भाव। तो नबी खुदा में कहा जाता है कि सबसे अधिक नम्रता का भाव था। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये हूं मैं वो हूं, उन्होंने तो ये कहा था मुझे तो कुछ भी नहीं पता, जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है, वो अल्लाह कर रहा है। और जो इतना भयंकर विरोध था, इतना विरोध कि 1900 जैसे कहा कि 670 में उनका जन्म हुआ, 570 में, 610 में कुरान नाजिल हुई 40 साल की उम्र में, पर अगले 3 साल उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, और उनकी जो पत्नी थी उसको ये बात बताई, और पहले तो घबरा गए ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है, पर वो पहली महिला थी, ये पहली रूह, पहली आत्मा कि जिसने उस पर विश्वास किया, खदीजा, कि आपको जो हुआ है इस पर मैं विश्वास करती हूं, जो जिब्राइल आया है ये खुदा का फरिश्ता है जिसने ये सारी बातें बताई है, तो वो फर्स्ट थी कि जिसने उन पर बिलीव किया। और फिर 3 साल उन्होंने ये किसी को कोई प्रचार नहीं किया, 3 साल के बाद प्रचार चालू किया, 3 साल तो खुद ही समझने में लग गया ये हो क्या रहा है, और फिर इसका प्रचार चालू किया, और जैसा ही प्रचार चालू किया क्या होने लगा, विरोध। और जैसे ये ज़ईफा, वैसे तो ये तो एक उदाहरण है, इसको नात कहा जाता है, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। और फिर 620 मदीना जाना पड़ा, लगभग इतना विरोध वहां हुआ। फिर वहां पर और बहुत सारी लड़ाई हुई 623 से लेकर 628 तक, और फिर जो 630 में वापस मदीना आए और उसके मक्का आए मदीना से, और उसके बाद फिर इस्लाम का बहुत सारे देशों में फैल गया और फिर सब जगह ये हुआ। तो इस्लाम का जो संदेश है वो है इस्लाम इज नॉन टेररिज्म, अमन शांति, क्योंकि पैगंबर खुद शांति चाहते थे और पैगंबर का स्वभाव खुद सबके साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करना था, और पैगंबर का स्वभाव खुद ऐसा था कि चाहे हमारे साथ कोई कुछ भी करे परंतु हमें उसके साथ वैसे ही पेश आना है जैसे खुदा चाहता है। ऐसे कहा जाता है उन तपती रेगिस्तान में, तपती धूप में जब मोहम्मद चलते थे तो ऊपर से बादल चलते थे ताकि उनको क्या मिले, छाया, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आज क्या है, ईद, ईद उल फितर। तो इसमें एक मास क्या होता है, रमजान, क्या करते हैं उसमें, उपवास करते हैं। कितनी कठोर साधना है वो उपवास, सही में बड़ी कठोर साधना है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके सारे डोजेस एडजस्ट करने पड़ते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं क्योंकि दिन में गोली नहीं ले सकते, इंसुलिन नहीं ले सकते, वो सुबह 4 से पहले और 7:30 इफ्तारी या सहरी बस वहीं पे वो खाते, दिन भर तो कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं, थूक भी नहीं निकलना है, इतना कठोर तपस्या है वही कृति से। और ये चालू इसलिए हुआ था कि ताकि खुदा के समीप रहे, क्योंकि जितना इंद्रिय सुखों में आत्मा डूबी रहती है उतना खुदा से दूर रहती है। और फिर आज का दिन भगवान बख्शीश देते जिन्होंने किया होगा, कई लोग करते भी नहीं है, उनमें भी कई लोग नहीं करते हैं, किनसे होता भी नहीं है। हमारे ओपीडी में एक छोटी सी कन्या आती है, छोटी सी एकदम इतनी सी, तो वो कहती है उसके सब लेके आते, वो कहती है ये दिन भर तो खाती रहती है और रात में कहती है मैं रोजा खोल रही हूं अब। दिन भर तो खाती है पर वो कहती है रात में अभी मैं रोजा खोलती हूं, रोज कहती है ऐसा। तो रोजा अर्थात भगवान के समीप रहना, कोई एक दिन का रोजा नहीं, हमारा तो निरंतर का रोजा है। रोजा अर्थात आत्म संयम, और इस्लाम का संदेश प्रेम का है, इस्लाम का संदेश अमन का है, शांति का है। वो कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गुण इतने हैं कि लिखने जाओ तो कभी समाप्ति ना हो। उन्होंने जो कुछ किया उनके जीवन काल में, उसके बाद जो इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ उसमें लोगों ने फोर्स, शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि नशा इतना रहता है कि यही खुदा है बस एक, इससे अधिक और कुछ है ही नहीं, ये अंतिम पैगंबर है, लास्ट प्रोफेट। इसके टोटल कुरान में 25 प्रोफेट्स का जिक्र है, इसके पहले जीसस क्राइस्ट, उसके पहले मोसेस, ये सारे डेविड, सबको प्रोफेट बताया। क्रिश्चियनिटी में उनको कुछ कुछ जो है उनको प्रोफेट नहीं कहा गया, पर इस्लाम उन सबको प्रोफेट मानती है, सभी को स्वीकार करता है इस्लाम, परंतु लास्ट में कहता है कि मोहम्मद लास्ट है, इसके बाद और कोई नहीं है, और कुरान इज द लास्ट वर्ड, और वो आज भी वैसा ही है। और कुरान में उन सभी बातों का वर्णन है जो आज साइंस ने बताई है, जैसे पहले मानते थे कि धरती कैसी है, चपटी है, पर कुरान में लिखा है गोल है। गैलीलियो जिसने ये सब बातें कही थी उसको तो बिल्कुल खत्म कर दिया लोगों ने, ये नई बात उसने बताई। तो उसी तरह ये आकाश क्यों है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज प्रोटेक्ट करता है, ये सब बातें, बहुत सारी हजारों साइंटिफिक बातें कुरान में लिखी हुई है। तो आज का जो दिन है वो है उस खुदा के समीप रहने का, उसकी इबादत करते हैं, एक दूसरों को क्या करते हैं, गले मिलते हैं, और क्या खाते, क्या है आज, सेवैया, और क्या कहते हैं। तो इस्लाम सब जगह फैला हुआ है और जो भी हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम शब्द का अर्थ ही होता है क्या, मुसलमान अर्थात कौन, जिसने मुस्लिम शब्द का क्या अर्थ है, फेथ, हु हैज ब्रॉट फेथ अपॉन हिमसेल्फ, ये जो फेथ है, जिसको ट्रस्ट है, एक खुदा है और उसका मोहम्मद पैगंबर है, ये मानने वाला मुसलमान है, इसको उसकी परिभाषा बताइए। तो एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड, अनकंडीशनल फेथ इन गॉड इज नोन एज, इज द वन हु वुड बी कॉल्ड रियल मुस्लिम। तो जो भी मुस्लिम भाई बहने हैं और यहां पर जो भाई बहने बैठे हैं उन सभी को, क्योंकि कोई भी पैगंबर जो आता है वो केवल एक स्थान के लिए नहीं आता है, सारे विश्व के लिए आता है, उसीलिए ये जो धर्म है और इस तरह के सारे जो धर्म है कोई एक स्थान के लिए नहीं थे, सारी मनुष्यता के लिए थे, और इन सब का क्या लक्ष्य था, एक ही था, अमन और शांति। तो इसका भी वही लक्ष्य है। तो सभी को आज के दिन ईद की मुबारक हो। ये जो कविता थी या नात जिसको कहेंगे, ये उर्दू में है, उर्दू हमको तो बहुत नहीं आती है, जिनको ज्यादा आती है ये अच्छे से सुन सकते हैं। हमने ये जब पहली बार सुनी थी, एक बार कुछ सालों पहले मेडिटेशन हॉल में ईयरफोन से बैठकर, इतने बहुत आंसू आ गए थे, कितनी उस व्यक्ति में कितनी नम्रता है, जरा भी अहंकार नहीं कि मैं भगवान का चुना हुआ हूं, कुछ भी नहीं। तो वैसे तो हम सभी पैगंबर खुदा है, हम सभी नबी खुदा है, हम सभी रसूल खुदा है, उसके पैगंबर है, जो एक एक भगवान ने आकर एक एक को मैसेंजर बना दिया है उसका संदेश सुनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति।
लिखा है एक ज़ईफ़ा थी के जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी, वो सुनती थी मुहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में, वो सुनती थी उबुल की लात की तजलील करता है, वो अपने हक के फरमाने की तावील करता है, वो सुनती थी जो उसके साथ है वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची, उमर के पांव पर सर रख उसने ये दुआ मांगी, मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है कि आजकल मैं रंज सहती हूँ, वो गम ये है मुहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में, मिटा दो उसकी हस्ती को तो ना ले कोई नाम उसका, जिगर छलनी हो जाता है सुन सुन कर कलाम उसका, दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई, समझती थी ये दिल में अब मेरी उम्मीद भर आई, ज़ईफ़ा को खुशी थी अब उबुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा, मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद भर आई, दुआ करके उबुल से अपने दिल में खूब पछताई, दुआ करके उबुल से अपने दिल में खूब पछताई, गरज तरकीब उसने सोचनी है खुद ही घर आकर, कि छोड़ूंगी ये बस्ती में رہوں گی اور کہیں جا کر. غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی, نکل کے اپنے گھر سے اور دروازے پر آ بیٹھی. ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے, اس کو کیا خبر تھی کہ خدا کا نور ملتا ہے. فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم, چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف رحمت عالم. جلوں میں آگ کے شمسوں قمر معلوم ہوتے تھے, پئے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے. ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی, یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی. ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا, بتا کیا نام ہے تیرا. کہا مزدور ہوں اماں, بتا کیا کام ہے تیرا. کہا مزدور ہے تو گھر چل گھتری میری لے کر. کہا مزدور ہے گھر تو کر چل گھتری میری لے کر, میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر. یہ سن کر آپ نے گھتری اٹھا کر آپ نے سر پر لی. ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی, غرض گھتری کو لے کر منزل مقصود پر آئی. کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی. کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری, محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری. لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم, تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم. یہ کوئی کام ہے اماں میں اب لوں جس کی مزدوری, کوئی گھر اور خدمت ہو تو بھی میں کروں پوری. یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے جانے کی تیاری, ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری. ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا, مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا. یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے, میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بول بھالا ہے. وہ مکہ میں قبیلہ ہاشمی نام لقب والے, وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے. انہی میں ایک جواہ ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے, کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے. وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم میں الفت بو کے رہتا ہے, جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے. ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے جب تو نام سن اس کا, نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا. نبی بری آنکھ دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے, نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے. ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا, تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا. کہا سرکار نے بریا سے تجھ کو کیا نام بتلاؤں, میں کیا کام بتلاؤں, میں کیا انجام بتلاؤں. میں بندہ ہوں خدا کا اور میں اس کا پیغمبر ہوں. کہا گردن جھکا کر آپ نے, میں ہی محمد ہوں. मैं हूँ मासूम, दुनिया में मेरा दुश्मन जमाना है। खुदा वाहिद है आलम में, मुझे बस ये बताना है। ये सुनना था कि बस आंखों से आंसू हो गए जारी, नबी के इश्क की एक छोटी सी दिल पर लगी तारी। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा करो मुश्किल मेरी आसान, मैं ऐसी जीत के सदके में ऐसी हार की कुर्बान। हुआ फिर हाल बर उसकी जो फजले दी जमीन बारी, ज़ईफ़ा की जुबा पर खुद बखुद कलमा हुआ जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा